السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين، اما بعد، فوز باللہ من الشیطان، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج پیر کا دن ہے، پیر کے دن ہمارے ہاں تصوف سے متعلق سوالوں کے جوابات دیے جاتے ہیں. السلام علیکم. یہ دونوں کتابیں مفتی سعید احمد پالنپوری شیخ الحدیث دیوبند کی ہے، کیا میں ان کو پڑھ سکتا ہوں؟ جزاک اللہ. مطالعہ یہ بہت بڑی نعمت ہے، جن کو بھی اللہ پاک نصیب فرمائیں. البتہ کون سی کتابیں زیر مطالعہ ہونی چاہیے، یہ ایک سوال یقیناً بہت اچھا ہے. ہمارے بزرگوں کا ذوق یہ ہے کہ مطالعہ، مطلب زارے کسی بھی چیز کے اوپر کئی قسم کی کتابیں لکھی ہوتی ہیں، جس میں اس مصنف کا طرز تحریر، حالات اور لوگوں کو بات بتانے کی ترتیب، یہ ساری چیزیں آتی ہیں. تو جیسے کہ شیخ کے ساتھ مناسبت ضروری ہے، مناسبت ہو تو فائدہ زیادہ ہوتا ہے. تو اس لیے ایسے حضرات جن کے ساتھ مناسبت ہو، ان کی کتابوں کو اگر دیکھا جائے تو پھر زیادہ فائدہ ہوتا ہے. تو اس میں ظاہر سب سے پہلے وہ قابر آتے ہیں جو سلسلے کے اپنے ہوتے ہیں، کیونکہ ہر سلسلے کی اپنا ایک ترتیب ہوتی ہے، ایک انداز ہوتا ہے، جس کی وجہ سے مطلب جو ہے نا وہ لوگ استفادہ اپنے اپنے طور پہ کرتے ہیں. تو میں یہ عرض کروں گا کہ ساری کتابیں جو آپ نے پوچھی یہ اچھی ہیں، لیکن تمام اچھی کتابوں میں انتخاب کس بنیاد پر ہو، تو اس سلسلے میں عرض کروں گا کہ بہتر یہ ہے کہ اپنے سلسلے کے صاحب تصنیف کوئی ہو تو ان کی کتابیں پڑھی جائے، تاکہ عدم مناسبت کی وجہ سے کوئی کمی نہ رہ جائے. تو سب سے پہلے میں سجیسٹ کروں گا کہ حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کی، یا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی، یا مولانا اشرف سلیمانی رحمۃ اللہ علیہ کی، ان موضوعات پر کتابیں موجود ہوں تو سب سے پہلے ان کو پڑھا جائے، کیونکہ اس میں 100% فائدہ ہوگا انشاءاللہ. بعد میں اگر ہو تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ تو میرا اپنے خیال یہ کہ کوئی زندگی بھر بھی ان کی کتابوں کو پڑھے گا تو شاید پورا نہیں کر سکے گا، کیونکہ حضرت کی تقریباً 1000 سے زیادہ کتابیں ہیں. اس طرح حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں یا پھر اور حضرات کی، تو اس وجہ سے میں عرض کروں گا کہ ان حضرات کی کتابیں پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. باقی ماشاءاللہ یہ کتابیں اپنے طور پہ اچھی ہیں. میں خود آپ کو اپنا واقعہ بتاتا ہوں کہ ایک دفعہ میں نے ایک بہت بڑے بزرگ کی کتاب پڑھی تو مجھے پوری رات نیند نہیں آئی. تو میں حضرت کے پاس پہنچ گیا، مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. تو حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ تو نے کون سی کتاب پڑھی ہے. میں نے کتاب کا نام دے دیا. تو حضرت نے فرمایا آئندہ تم پر یہ کتاب پڑھنا بند. پھر تھوڑی دیر کے بعد فرمایا تم پر ساری کتابوں کا پڑھنا بند، بس صرف تانویر حسب کے معاذ و ملفوظات پڑھو گے. اور پھر یہ ارشاد فرمایا کہ کتاب میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کتاب تو بہت اچھی ہے، لیکن بعض دفعہ ڈاکٹر مریض کے لیے ملائی بھی روک دیتے ہیں. تو یہ جو روکنا ہوتا ہے ان کی، مطلب جیسے معدہ کے اندر طاقت نہ ہو کسی چیز کو ہضم کرنے کی، تو مسئلہ ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے کتابوں کا جو اثر ہے اس کا بھی برداشت اگر نہ ہو. تو خود حضرت تانویر حسب نے فرمایا کہ میرے سامنے ایک وکیل صاحب تھے جس نے احیاء العلوم کا کتاب الخوف پڑھا تھا، تو ان کی حالت بہت دگرگوں تھی، ان سے صاف چلے بھی نہیں جا رہا تھا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے اوپر وہ کتابیں پڑھنا بند ہے. تو اس طریقے سے مناسبت ہو تو پھر انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ ان حضرات کو ان تمام چیزوں کا اندازہ ہوتا ہے. اللہ جل شانہ ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرما دے. السلام علیکم. حضرت آئی ایم آن غذائی ذکر ناؤ بٹ نٹ اسائنڈ اینی علاجی ذکر اینی مور سنس 28 جنوری 2019. اٹ از مائی اگنورنس دیٹ آئی کوڈنٹ کم ٹو خانقاہ ایوری ویک. آئی ڈو پلان ٹو بی ان دیئر بٹ سڈنلی سم تھنگ ہیپنس. प्लीज हजरत असाइन मी सम इलाजी जिक्र एज वेल मोर एवर हजरत इफ आई एम नॉट रिसाइटिंग द फोर कुल्स बिफोर स्लीपिंग इन केस आई स्लेप्ट आई कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली आई यूज टू बी अवेकंड एट फजर टाइम बट वेन आई एम रिसाइटिंग द केस इज अपोजिट प्लीज हजरत फॉरगिव माई मिस्टेक एंड गाइड मी टूवर्ड्स द वे टू अल्लाह इकरम। तो मैंने इसे पूछा कि इलाज जिक्र मैंने आपके लिए कब बंद किया था, तो खामोश रहे। फिर मैंने दोबारा पूछा, मैंने इसका आपने जवाब नहीं दिया। हजरत इन द लास्ट मैसेज आई थॉट नाउ आई जस्ट नीड टू कंटिन्यू विद गजाए जिक्र, प्लीज़ फॉरगिव मी माई मिस्टेक विल बी केयरफुल इंशाल्लाह। तो मैंने कहा जहाँ से रुका था वहीं से शुरू कर लिया। मसल में उनको गलत फहमी हो गई थी कि मैंने इलाज जिक्र उसका रोक दिया, हालांकि वो सिर्फ मैंने मजाज बैत और मजाज सोबत लोगों के लिए रोका था, और वो भी किसी ख़ास मकसद के लिए, और फिर बाद में उनको शुरू कराया था। लेकिन बहरहाल चलो उसको गलत फहमी थी, तो फिर दोबारा मैंने वो इलाज जिक्र शुरू कराया था। एक खातून थी जिसने कुछ इस तरह बात की थी कि माँ की तरह जो मोहब्बत है वो बताया जाता है कि 70 माँओं से ज़्यादा मोहब्बत है, लेकिन इस तरह मैं महसूस तो नहीं कर रही, तो ये क्या बात है। तो मैंने उसको जवाब दिया कि आपको सिर्फ जज्बात वाली मोहब्बत समझ में आती है, बेलोस गैर जज्बाती मुफीद, बल्कि जिसके बगैर इंसान तबाह हो जाए उस मोहब्बत की आपको हवा भी नहीं लगी, तभी आप ऐसी बात कर रही हैं। तो ये बात उनको समझ आ गई। वाकईतन अल्लाह पाक की जो मोहब्बत है वो, यानी माँ की मोहब्बत और बाप की मोहब्बत में ये फ़र्क है कि माँ की मोहब्बत जज्बाती होती है, वो बच्चे की हर ख्वाहिश को पूरी करती है, और बाप की मोहब्बत उससे ज़रा ज़्यादा अकली होती है, लिहाजा वो बच्चे की हर ख्वाहिश को पूरा नहीं करते बल्कि उसके लिए जो मुफीद होता है वो करते हैं, क्योंकि मर्दों पे अक्ल का जज्बा ज़्यादा गालिब होता है। तो अल्लाह जल्ला शानु तो हमारे ज़ाहिर बातिन तमाम तफसीलें जानता है, और अल्लाह जल्ला शानु तो जज्बात से पाक है, तो इस वजह से जनाब अल्लाह पाक हमारी फ़ायदे के लिए बात करते हैं जिसमें हमारा असल फ़ायदा होता है, और वही अल्लाह जल्ला शानु की मोहब्बत है। तो ये बात उनकी समझ में नहीं आ रही थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद उसको समझ आ गई। तो फिर उसने मुझे लिखा कि अस्सलाम वालेकुम हज़रत जी, अल्लाह पाक आपसे राज़ी हूँ, आपका फेस पूरे आलम में फैलाए और कबूल फरमाए, आपके कल के जवाब को पढ़ा एक बार नहीं दो बार दो, और मुझे नहीं मालूम हज़रत जी दिल पर इतना बोझ महसूस हुआ कि मैं कितनी ज़्यादा नालायक हूँ, क्या औकात है मेरी और कैसी बातें कर रही हूँ, अजब हाल तारी हो गया, उतनी शर्मिंदगी हुई कि मुसलसल रोना तो बस अखबार की कसरत शुरू कर दी, अल्लाह ताला से बहुत माफ़ी मांगी, ऐसा लगा कि फिर जैसे मैं किसी शिकंजे की कैद से आज़ाद हुई हूँ, जो मैं कब से इतनी परेशान थी कि वो हाल बन गया था, और पिछले हफ्ते जो वसाविस की शिद्दत थी कंट्रोल से बाहर हो गई थी, वो सब आपके जवाब को पढ़कर तौबा इस्तिग़फ़ार से ख़त्म हो गई, और बाकायदा महसूस हुआ कि मैं किसी गिरफ्त या एहसार से निकली हूँ। हालांकि हज़रत जी मुझे आमतौर पर कभी कैफियत नहीं आती, और आपने बजा फरमाया मुझे ज़ाहरी मोहब्बत का पता लगता, बाकी समझ नहीं आती, लेकिन फिर याद आ गया था कि आप सल्लम अल्लाह पाक के सबसे ज़्यादा महबूब है और दुनिया में सबसे ज़्यादा तकालीफ बर्दाश्त की, मैं क्या समझ रहा हूँ ख़ुद को, दुनिया मिल जाए तो अल्लाह पाक की मोहब्बत नहीं है। फिर बहुत शुक्रिया ज़ात पाक ने आपके साथ नसीब फरमाया, इस दुनिया में इससे बढ़कर कोई नेमत मैं इसके काबिल नहीं थी, इसी वजह से मुझे इतनी मोहब्बत है तभी आपके साथ नसीब फरमाया, वरना पता नहीं कि मैं किस हाल में होती। अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है कि आपकी बरकत से बची हुई हूँ, मैंने आपको बताया था कि कुछ कर नहीं सक रही, फारिग हूँ, हालांकि काम जहन में है, फिर भी अब आज से अल्हम्दुलिल्लाह मिसवाक की रिसर्च पर फोकस दोबारा शुरू कर दिया है, काफ़ी हो गया था आपके कलाम सुनकर आपकी फ़िक्र याद आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह आप जल्द इसको मुकम्मल करने की कोशिश शुरू कर दी है, और करके आपको भेजूँगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम हजरत जी, सब मामूलात कर रही हूँ, बस मुराकबा नहीं हो पाया। अच्छा, जिसके लिए माजरत चाहती हूँ, घर में काफ़ी मेहमान आए हुए हैं 1 माह से। आपने लतीफ़ा कल्ब पे 1 घंटा अल्लाह अल्लाह हो रहा है का दिया था। मैं दोबारा शुरू करना चाह रही हूँ हजरत जी, ये शुरू कर लूँ तो मैंने कहा कि अब 4500 मरतबा, 4500 मरतबा अल्लाह अल्लाह तो कर रही है ना। तो उन्होंने कहा वो पहले कर रही थी मगर अब वो भी नहीं कर रही है, आपने दोबारा करने के लिए कहा है, नहीं था, कहा ही नहीं था। तो मैंने कहा बस अब मुराकबा न करें, वही 4500 मरतबा अल्लाह अल्लाह कर लिया करें, मुराकबा की शायद आप काबिल नहीं हैं। तो उसने कहा जी बेहतर। असल में बात यह है कि ये होता है इस तरह है कि डॉक्टर जो दवाई देता है तो मेहमान भी आ जाते हैं तो दवाई इंसान खाता है, और उसके लिए मतलब जा रहे खाना भी कोई नहीं छोड़ता, सो नींद भी सोई कोई नहीं छोड़ता, लेकिन जब मेहमान आ जाते हैं तो इन चीज़ों को छोड़ने लगता है। ये हर एक का अपना अपना मसला है। तो लिहाजा ज़ाहिर मतलब यह है कि ऐसे हालात में इंसान फिर क्या दे सकता है, तो इसके लिए तो कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तो इस वजह से मैंने कहा कि अब आप सिर्फ यही कर लें, मुराकबा के लिए जो एक सुई है वो आपसे हो नहीं रही, तो फिर जो है लिसानी जिक्र मैंने उनको बता दिया। अस्सलाम वालेकुम हजरत मुर्शिदी, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। हजरत जी, शायद मैं गलत हूँ लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है कि मरजू मुतमक्किन अक्सर नक्शबंदियों में पाए जाते हैं, अगर ये हकीकत है तो क्यों है? जज़ाकअल्लाह खैर। ये असल में मरजू मुतमक्किन बाकी सिलसिले में पाए ही नहीं जा सकते, उसकी वजह यह है कि जज्ब कस्बी सिर्फ उसूली तौर पर नक्शबंदियों में ही था। अब शायद बाकी सिलसिलों में भी शुरू हो गया है, लेकिन उसके साथ वो मसाइल नहीं है कि इंसान अपने आप को उस मैदान में समझ सके। मसलन नक्शबंदी हजरात चूँकि मुराकबात करते हैं, मुराकबात के साथ कशफियात भी शुरू हो जाती हैं, और इस तरीके से मतलब जो है ना वो कुछ चीज़ें होनी लगती है जिससे इंसान अपने आप को बुजुर्ग समझने लगता है। तो बाकी असकार में तो ये चीज़ नहीं है, लिहाजा वो अपने आप को इस किस्म का नहीं समझते। हाँ जी, तो चूँकि जज्ब कस्बी का सिलसिला शुरू ही नक्शबंदी हजरात ने किया था, और ये बहुत मुफीद तरीका था, क्योंकि वाकयतन दिल अगर साथ ना दे तो नफ्स का इलाज करना मुश्किल हो जाता है उमूमी तौर पर। तो चूंकि हजरत ने जैसे फरमाया हजरत तानवी रहमतुल्लाह अलैह ने कि चिश्ती सिलसिला खवास का है और नक्शबंदी सिलसिला अवाम का है, उसकी वजह यही थी कि नक्शबंदी सिलसिले में अवाम का ख्याल रखा गया है कि जिन जो लोग बराह रास अपने नफ्स के इलाज के लिए तैयार नहीं होते तो उनको पहले दिल का यानी उससे गुजारा जाता है, यानी तरबियत से गुजारा जाता है कि दिल साफ़ हो जाए और दिल में शौक पैदा हो जाए, तो उस वजह से जज्ब कस्बी उनको करना पड़ता है। तो वो जज्ब कस्बी से जज्ब शौक हासिल हो जाता है, फिर इसके ज़रिए से वो नफ्स के इलाज के लिए उनको तैयार करना था। अब शैतान तो वैसे तो नहीं बैठा हुआ, वो तो ज़ाहिर अपना काम करता है, तो इनने आहिस्ता आहिस्ता इन हजरात में ये बात शुरू कर ली कि बस ये काफ़ी है, और बल्कि उनने यहाँ तक है कि एक रास्ता जज्ब का है, दूसरा रास्ता सलूक का है, तो जिसको जज्ब रास्ते के साथ अल्लाह ताला ले जाए वो भी ठीक है, जो सलूक के तरीके से चले जाए वो भी ठीक है। बल्कि बाज़ ने तो कह दिया कि जज़ब की मिसाल लिफ्ट की है और सलूक की मिसाल सीढ़ियों की है, यहाँ तक भी बाद लोगों ने कह दिया। हालांकि जज़्ब जो है ना वो असल में ये चीज़ है कि इंसान को यानी दिल का जो है ना शौक और मोहब्बत पैदा हो जाता है, ये उसको जज़्ब कहते हैं। चाहे उसको फौरी हो जाए चाहे बारी आहिस्ता आहिस्ता हो जाए, लेकिन है दिल के साथ इसका ताल्लुक, इसका नफ्स के साथ ताल्लुक नहीं है। यानी जज़्ब का ताल्लुक दिल के साथ है। तो बकौल हज़रत मुजद्दद साहब रहमतुल्लाह अलैह के, जज़्ब से यानी जज्ब कस्बी से मुकाम कल्ब में इंसान पहुँच जाता है, क्योंकि जज़्ब मुकाम दिल में हासिल होता है, नफ्स के साथ तो इसका ताल्लुक ही नहीं है। तो इस सूरत में जब मुकाम कल्ब में पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर नफ्स का जो असर है वो भी दिल पर हो रहा होता है, और जो रूह का असर है वो भी दिल पर हो रहा होता है। अब रूह जो है ना वो दिल को ऊपर की तरफ ले जा रहा होता है, नफ्स उसको नीचे की तरफ ले जा रहा होता है, नफ्स अपने ख्वाहिशात की तरफ ले जाता है। तो गोया कि यहाँ ही लड़ाई होती है, मुकाम कल्ब में दोनों की लड़ाई होती है, नफ्स और रूह की। तो अब ये बात है कि अगर ये लड़ाई में नफ्स का मतलब नफ्स को जो है ना जेर न किया जाए, तो उस वक्त तक रूह जो है ना वो काम नहीं कर, जिसको रूहानियत कहते हैं, क्योंकि दो चीज़ें हैं, नफसानियत और रूहानियत की लड़ाई है। हाँ जी, तो अगर रूहानियत फेल हो जाए तो नफसानियत ही की बादशाही होगी, और नफसानियत को अगर जेर किया जाए तो रूहानियत की बादशाही होगी। तो ऐसी सूरत में फिर मुजाहदात और रियाजतों और तमाम मकाम से लुत्फ़ तय करने से वो रूहानियत गालिब हो जाती है, नफसानियत मगलूब हो जाती है, इस वजह से अब्दियत हासिल हो जाती है, और रूह का ताल्लुक आलम बाला के साथ हो जाता है, मलाए आला के साथ। तो मलाए आला के ज़रिए से जब मतलब जैन वो फिर वो कल्ब लेता है, तो नफ्स चूँकि अब्दियत के मुकाम पर पहुँच जाता है तो वो नफ्स के ज़रिए से लेता है। किस तरीके से देता है, ये बहुत अजीब सवाल था मेरे जहन में भी। बात ये थी कि हज़रत ने फरमाया था कि ऐसे वक्त में जब इंसान मुंतही मरजू हो जाता है तो वो मलाए आला से अल्लाह ताला से रूह के ज़रिए से लेता है और नफ्स के ज़रिए से देता है। तो ये नफ्स के ज़रिए से कैसे देता है? तो अल्लाह पाक ने बात पर मुझ पर खोली कि असल बात यह है कि जब वो मुंतही मरजू होता है तो फना के बाद बका हासिल हो जाता है, फना के बाद जब बका हासिल होते हैं तो फिर नफ्स के तकाजे दोबारा वापस आ जाते हैं, नफ्स के तकाजे दोबारा वापस आ जाते हैं। हज़रत थानवी मुसलम ने इसको अपनी ज़बान में फरमाया था सुबह सादिक, तो फरमाया कि जब जिस वक्त इंसान इब्तिदा में जो हासिल कर लेता है वो सुबह काजिब होते हैं, रोशनी उनको नज़र आती है लेकिन वो असल रोशनी नहीं होती, उसके बाद फिर अंधेरा चाहता है, तो उसके बाद फिर सुबह सादिक आता है, फिर वो असल में। तो सुबह सादिक को इसलिए फरमाया था कि उसके बाद इंसान को नफसानी तकाजे मतलब सर उभारने लगते हैं लेकिन कंट्रोल में होते हैं। तो ऐसी सूरत में इंसान बाज़ दफ़ा समझता है कि शायद मेरा सारा मुजाहदा बेकार हो गया, हालांकि मुजाहदा बेकार नहीं हुआ, असल मतलब जो है ना वो फ़ायदे के लिए हो गया कि अब जो है ना उसके ऊपर काबू पा लिया, और काबू पाने की वजह से अजर वाला हो गया, अजर वाला हो गया मतलब तकवा इससे बनने लगा। हाँ जी, तो अब यह है कि असल कमाल तो अब शुरू हो गया, जिस वक्त वो मकलूबुल हाल था उस वक्त तो अपना अमल तो उसका कुछ भी नहीं था अपना अमल तो उसको तो मकलूबुल हाल था। हाँ जी, तो उस वक्त तो उसका कोई अमल नहीं था, लेकिन जिस वक्त अब ये दोबारा यानी वो नफ्स के वो सारी चीज़ें रूत कूद कर आ गई, तो अब जो है ना मतलब ये कि और है कंट्रोल में। तो ऐसी सूरत में चूंकि उसके अपने तकाजे मौजूद होते हैं तो दूसरों के तकाजों का भी वो सेंस करते हैं, नतीजतन उनका इलाज भी कर सकते हैं, उनकी तरबियत भी कर सकते हैं। मसलन अगर कोई शेख को अपना हाल बता दे अपने नफ्स की किसी बीमारी का, अब अगर शेख को उसका पता न हो तो कैसे इलाज करेगा? ज़ाहिर मतलब शेख को उसका पता होगा तो उसका इलाज करेगा। तो इस वजह से मतलब उनको उन तमाम चीज़ों का अंदाज़ा होता है लेकिन वो काबू में होते हैं। हाँ जी, तो वो फिर इलाज कर सकता है, उसका इलाज कर सकता है। तो ऐसी सूरत में मतलब जो है ना वो यानी वो कामिल होता है। तो इसकी मुझे हदीस शरीफ से भी तस्दीक हो गई, और हदीस शरीफ में ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा हमारी एक माँ ने आप सब के लिए तुलाई जो है ना डबल कर दी थी, डबल कर दी थी ताकि नरम हो। तो आप सब ने बाद में फरमा दिया कि इसको एक सिंगल ही कर दो, क्योंकि इससे फिर सुबह उठने में तकलीफ मुश्किल होता है। तो अब देखो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर ये चीज़ ना होती तो कैसे पता चलता, कैसे पता चलता? तो अब ज़ाहिर दूसरों के लिए भी रहनुमाई हो गई। तो इसका मतलब है कि ये जो नफसानी तकाज़े हैं वो ज़िंदा हो जाते हैं। अलबत्त यानी जैसे वहदुल वजूद के बाद जब इंसान आता है तो इलम दोबारा वापस आ जाता है। हाँ जी, इलम जो मफकूद हो चुका होता है वहदुल वजूद में, बाकी चीज़ों का सिर्फ अल्लाह पाक की पता होता है, तो उस वक्त वो मगलूबुल हाल होता है, लेकिन जब वो बाहर आता है तो अब वो गालिबुल अहवाल हो जाता है। उस वक्त जो है ना, मतलब ये है कि उसको इल्म मिल जाता है वो दोबारा तमाम चीज़ों का, लेकिन उसको अल्लाह के साथ इतना ताल्लुक़ हो चुका होता है कि वो तमाम चीज़ों को जो जानता है वो अल्लाह के हवाले से जानता है, यानी कि जो हुकूक है वो अल्लाह के हवाले से जानते हैं, लिहाजा वो तमाम हुकूक अल्लाह पाक के लिए पूरे करते हैं, और यही असल मतलूब है। तो इसी तरीके से मतलब यहाँ पर भी है कि जो है ना, मतलब जो अल्लाह से लेते हैं वो मखलूक को जो है ना, मतलब नफ्स के ज़रिए से देते हैं। तो बहरहाल ये कि मुंतही मरजू हम इसको कहते हैं। तो अब ये है कि जो रह गया बेचारा अपने उस हालत में कि उसका दिल तो ठीक हो गया था, मतलब यह कि उसके नफ्स के इलाज के लिए तैयार हो गया था, लेकिन नफ्स के इलाज उसने किया नहीं, तो बहुत जल्दी नफ्स उसको दोबारा घेर लेता है। लेकिन नफ्स अब जो दोबारा घेर लेते तो दिल की वो सलाहियत हासिल हो चुकी होती है, जैसे पहले नफ्स कंट्रोल हो चुका, इस वक्त दिल की सलाहियत है, जैसे मुराकबा की सलाहियत हासिल हो चुकी है, तवज्जो की सलाहियत हासिल हो चुकी होती है, हाँ मुतासर करने की सलाहियत हासिल हो चुकी होती है, तमाम चीज़ अब ये नफ्स के लिए इस्तेमाल होने शुरू हो जाती है, और यहीं से ख़राबी शुरू हो जाती है। हाँ जी, अब अगर इस वक्त ये नफ्स का पूरा सलूक तय कर लेता तो ऐसे वक्त में ऐसा ना होता, लेकिन अब चूंकि ऐसा हो चुका है तो वो फिर ये है कि आहिस्ता आहिस्ता वो दूर हो रहा होता है। ऐसे लोग के लिए पर हज़रत ने फरमाया था कि जो है ना, मैं न खुद पहुँचे न दूसरों को पहुँचा सकते हैं। तो ये जो मजलूम मुतमक्किन है वो असल में ये साइड इफ़ेक्ट है नक्शबंदी सिलसिले का, ये साइड इफ़ेक्ट है। हाँ जी, मजबूरी है, ज़ाहिर मतलब ये है कि इस वक्त शेख कामिल को बहुत ज़रूरी है कि किसी मुरीद को मजलूम न बनने दे, मजलूम मुतमक्किन न बनने दे। वो एक दफ़ा मेरे पास एक साहब थे, साथी हैं, वो पहले नक्शबंदी सिलसिले में थे, फिर मेरे साथ आ गए, तो मुझसे फरमाया कि आज जो आपने बयान कर लिया ना, वो तो ऐसा बयान था कि अब किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं रही। मैंने कहा सर, आप मुजद्दद साहब के मुरीद हो फिर भी ऐसी बातें करते हैं। मैंने कहा मुजद्दद साहब रहमतुल्लाह तो किसी को रुकने नहीं देते, वो तो चलाए रखते हैं, आगे चलो आगे चलो आगे चलो, वो रुकने तो नहीं देते। तो आपने कह दिया कि बस काम हो गया, बस पूरा हो गया, ये कैसे आप कह सकते हैं? तो असल बात यह है कि वाकईतन यानी ये चीज़ फिर हो जाती है, तो साइड इफ़ेक्ट है। तो ये नक्शबंदी सिलसिले का साइड इफ़ेक्ट है। अल्लाह ताला का शुक्र है कि मुजद्दद साहब की कलम से इसके बारे में सारी बातें निकल गई। अगर हज़रत इसके बारे में कुछ न फरमाते तो इसका इलाज मुमकिन ही नहीं था, बहुत ही मुश्किल था, कौन समझाता? अब भी किस्मत से ही लोग समझते हैं। हाँ जी, लेकिन अगर ये बात ना होती तो फिर तो उनके समझने का इम्कान ही ना होता। तो ये जो हमारी किताब है वो जो है ना, हकीकत जज्ब व सलूक, उसमें असल में इन्हीं चीज़ों का हज़रती के उस मकतूब के ज़रिए से इन तमाम चीज़ों को खोला गया है। या सही तो मुर्शदी दिन पहले मुझे अपने दिल से अल्लाह अल्लाह की आवाज़ आया करती थी और मुझे महसूस भी होता था, अब जो है वो अल्लाह अल्लाह की आवाज़ तो बंद हो गई, वो सिर्फ़ एक कंटिन्यूस वाइब्रेशन मेरे लताइफ में होती है, बिलखसूस लतीफ़े कल्ब व रूह में, और नमाज में कैफियत और बढ़ जाती है। इस पर वजाहत फरमाए तो मेहरबानी होगी। असल बात यह कि ना तो ये जिस तरह आवाज़ हम महसूस करते हैं वो मकसूद है, ना ये वाइब्रेशन मकसूद है, ये तो इनके सिर्फ रास्ते की मतलब चीज़ें हैं जो होती है। असल तो दिल का मुतासर होना है, दिल का मुतासर या लताइफ का एक्टिवेट होना है। तो एक्टिवेट होने की अलामतें हैं, मतलब आप उसको जो कह सकते हैं, तो अलामतें मुख्तलिफ हो सकती है। हाँ जी, मुख्तलिफ मसल जिस किसी ने कौन से रंग का आईना, कौन से रंग का शीशा पहना हुआ है तो वो फिर उसी रंग का नज़र आएगा। तो इसी तरीके से मतलब यह है कि ये जो दिल का मुतासर होना है या एक्टिवेट होना है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है ना सेंस हो सकता है। तो कभी आवाज़ से होगा, कभी वाइब्रेशन से होगा, कभी इसके मुतालिक कैफियत से होगा, क्योंकि दिल की अपनी है, रूह की अपनी है, सिर की अपनी है। असल तो ये असरात है इसके, वो जो असरात है मशायख उसके असरात को देखते हैं कि उसके असरात हैं या नहीं है, इसको नहीं देखते कि वाइब्रेशन कर रहा है नहीं कर रहा है, वो तो इसके सिर्फ सतही चीज़ें हैं, लेकिन असल इसके असरात है कि जो है ना वो, यानी इंसान का दिल जिस वक्त वो अल्लाह के साथ मिल जाता है तो वो फिर ये है कि वो तमाम चीज़ों को भूल जाता है, और रूह में फिर ये होता है कि इंसान सेंस करने लगता है कि मेरे जिम्मे फिर क्या चीज़ें हैं, मैं क्या करूं, तो फिर उस सुन्नत की तरफ रागब होता है। तो इस तरीके हर एक चीज़ के अपने अपने असरात हैं, तो उन असरात के ज़रिए से इसको पहचाना जाता है। बाकी ये है कि ये वाइब्रेशन भी ठीक है, वो दिल की आवाज़ अब जो आ रही थी वो भी ठीक है, जिस तरीके से अल्लाह ताला का दे दे तो ठीक है। हाँ, अलबत्ता इसके जो असरात है वो होने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम हज़रत, मैं फ़लाँ हूँ। हज़रत, आपने मुझे 1 महीने के लिए 10 मिनट कल्ब और 10 मिनट रूह और 15 मिनट सिर का मुराकबा दिया था। हज़रत, मैं वो करती रही, पहले तो रूह भी कमज़ोर लगा था, सिर पर मिलता ही नहीं था, यूँ लगता है जैसे कल्ब शुरू हो गया है। फिर बीच में कुछ ज़्यादा दिन का नागा हुआ, दिल मुराकबा करने से डरता था कि ज़्यादा है, कल से शुरू करूँगा। फिर अल्लाह पाक के फजल शब बारात का रोज़ा नसीब हुआ, आज दिल बना है, मैंने मुराकबा मुकम्मल किया और कल्ब रूह और सिर तीनों पर अलग अलग और वाज अल्लाह अल्लाह महसूस हुआ है। ऐसा महसूस जैसे सितारे देखने में जिलमिलाते महसूस होते हैं, कल्ब रूह और सिर महसूस होने में ऐसे लगते हैं। माशाल्लाह, शब बारात की बरकत है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला इस बरकत को मज़ीद बढ़ाए और हिम्मत जमा रखें। ज़्यादा मतलब इसको ना समझे, अभी तो आपने कुछ भी नहीं किया, मतलब यह कि तो ज़ाहिर है, मतलब है कि हमें अगर कुछ लेना है तो कुछ कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। ये इस तरह नहीं होता कि आप जो है ना वो, तो अभी तो माशाल्लाह यानी शुरू से शुरू ही हुआ है, तो लिहाजा हिम्मत जवान रखे, रुके नहीं। और अभी कुछ ज़्यादा नहीं हुआ, 10 मिनट 10 मिनट 15 मिनट। हाँ जी, ये तो हमारे बात साथी 3 3 घंटे अपने मुराकबात करते हैं, तो हम तो इतना नहीं कराते, वो करते हैं, लेकिन अपने तो अभी अपने तो अभी से हथियार डाल दिए। हाँ जी, 20 और 15, 35 हो गया ना, तो 35 मिनट पे आपने हथियार डाल दिए, तो ये तो बड़ी अजीब बात है। वालेकुम सलाम। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम शेख, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, बस तस्लीम। अर्ज़ है कि राबिता में बहुत कमज़ोरी कर दी है, त्यूरी सब आती है कि राबिता मतलब जो है ना वो है, फर्स्ट है, और मामूलात 15 आने का है और मामूलात 1 आने का, और ये भी पता है कि इख्तियारी का इलाज इख्तियारी है और इख्तियारी में सुस्ती नहीं करनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद प्रैक्टिकल में सब नहीं है। आखिरी दफ़ा जनवरी का चार्ट हजरत की खिदमत में पेश किया था और फरवरी का चार्ट फिल तो किया लेकिन भेजा नहीं, मार्च अप्रैल का फिल भी नहीं किया। मामूलात में तो ज़्यादा मसला नहीं है, कभी कभार ना ही होते वरना ज़्यादातर मामूलात पूरी हो जाते, लेकिन चार्ट फिल करने में बहुत गफलत है। हालांकि अब तो एक्सेल शीट पर फिल करके भेज देती हूँ। इसके अलावा पता नहीं कब मुझे गलत फहमों की मुराकबा इतला महीना पूरा होने पर तब देनी है जब बिलानागा 1 महीना पूरा हो और उसकी नौबत ही नहीं आती, हर महीने कुछ ना कुछ नागे हो जाते हैं, 3 से 5 नागे, और उसकी कि मैं बहुत अरसे मैंने मुराकबा की रिपोर्ट नहीं दी। बयानात भी खवातीन के सवाल जवाब और फजर के बाद वाले सब सुनती हूँ, लेकिन वही मसला है कि राबिता कमज़ोर कर लिए, बल्कि राबिता भी अच्छा या लेकिन या तो ग्रुप के लिए फिर बेटे के हवाले से अब एहसास हो रहा है कि अपनी इसलाह के लिए तो कब से राबिता नहीं किया, नज़र का मुजाहिदा भी पूरा किया था क्योंकि शुरू के महीनों में तो करती हुई थी और अब बहुत अरसे से खामोशी का लिए हुए, लेकिन समझ नहीं आती कि मेरा फेवरेट डिस्कशन है। अब समझ आना शुरू है कि मुझ पर सबसे ज़्यादा जिनका हक है मियाँ और बच्चे का, उनके साथ सबसे ज़्यादा तलख कलामी में करती हूँ। इसकी वजह यह है कि जब ये गुमान गालिब हो कि अब इन अब के साथ मेरे बिगड़ने के अमकान हैं, तो इसमें 10 15 मिनट का टाइम लगा कर चुप हूँ। बहुत अरसे से अपने गफलत का तस्करा करना चाह रही थी, लेकिन शर्मिंदगी होती रहती कि कैसे आपको सब बताऊँ। हदज कज़ाए उम्री भी मेरी पूरी उम्र नहीं है, जिसके लिए मुझे नफल नमाज से रोकने का आपने फरमाया था, अगर आप इजाज़त दें तो मैं नफल का मामूल शुरू करूँ, क्योंकि इस तरह तो मैं न 3 में रहती हूँ न 13 में। कज़ा नमाज फजर या इशराक पर रोज़ाना 1 दिन पढ़ने की कोशिश करता हूँ, मामूलात चार्ट में भी इसका कालम बना हुआ है। दुरुतुंजीने के मजलिस के वक्त वो नीयत करती हूँ कि हजरत जी से राबिता करूँ इसलाह के लिए और सलूक तय करने के लिए, और नमाज के बाद ये दुआएँ ख़ास तौर पर करती हूँ कि अल्लाह पाक आपके मुबारक हाथों में नफ्स कल्ब और अकल की इसलाह करवाने की तौफीक दे। फिलहाल ख़ास महीने चल रहे शाबान मुअज्जम और रमजान, तो इस पर भी अपनी शर्म को ख़त्म करके पेश कर दिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा हुआ कि अल्लाह ताला ने आपको ये समझ अता फरमा दी, और वाक़ई राबिता बहुत बड़ी चीज़ है और शैतान इसी पे वार करता है। और दूसरी बात यह कि अब जो معمولات کا چارٹ ہے اس کو فل نہ کرنا، یہ بھی شیطان کا بہت بڑا ہتھیار ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ اس سے فائدہ بہت ہوتا ہے، تو اس طرح اس کو ہلکا ظاہر کر کے جو ہے نا مطلب اس کو فل نہیں کرنے دیتا، اس سے نقصان سالک کا بہت زیادہ ہو جاتا ہے. لہذا آپ کا بھی اس سے نقصان ہو گیا. اور جو آپ مراقبہ کے بارے میں بڑی عجیب بات آپ نے بتائی کہ جب ساری جب ٹیک ہوں ناغا نہ ہو تو پھر آپ کو رپورٹ کرنی ہے، تو یقیناً یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے اور اس کو مکمل دور ہونے چاہیے. میں تو اس کو بہت آسانی کے ساتھ یہ عرض کر لیتا ہوں اس میں کہ اگر کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ تو آپ ان کو یہ بتائیں کہ میرے آنکھیں بھی ٹھیک کام کر رہی ہے، میرے کان بھی ٹھیک کام کر رہے ہیں، میرا دل بھی ٹھیک ہے، میرا دماغ بھی ٹھیک ہے، میرے ہاتھ پاؤں بھی ٹھیک ہے، کیونکہ اکثر تو ٹھیک ہی ہوتے ہیں، خرابی تو صرف ایک یا دو میں ہوتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب سن کے کیا کہے گا؟ شاباش دیں گے، یہ اچھا ہوا آپ تشریف لائیے، آپ نے مجھے فیس دے دیا، ماشاء اللہ بہت اچھی ہے، بہت صحت مند ہے، السلام علیکم. کیا آپ یہ سننا چاہتی ہیں؟ اگر ڈاکٹر سے بھی آپ یہ سننا چاہتی تو میں آپ کو پاگل نمبر ایک کہوں گا. ہاں جی، اور اگر ڈاکٹر سے آپ یہ نہیں سننا چاہتی اور مجھ سے یہ سننا چاہتی تو میں عیار نمبر ایک کہوں گا. ہاں جی، کہ میرا ساتھ آپ عیاری کر رہی ہیں. کیسے مطلب یہ ہو سکتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ نے مجھ سے بیعت کی ہے اس کے لیے کہ آپ مجھے صرف اپنی اچھی چیزیں بتائیں گے. ہاں جی، یہ شیخ تو ہوتا ہے جو غلط چیزیں ہوتے ہیں ان کی اصلاح کے لیے، مطلب اچھی چیزوں کی اصلاح کون کرتا ہے؟ وہ تو اچھی ہی ہوتی ہیں. ہاں جی، تو یہ آئندہ کے لیے مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آتی، کیونکہ جب بھی کوئی شیخ کے پاس ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو اس کے ایک ناخن میں تکلیف ہوتی ہے، کسی اور چیز کا نہیں بتاتا، اسی ناخن کا ہی بتاتا ہے، کسی اور چیز کا نہیں بتاتا. اور شیخ کو اچھی اچھی خوابیں سنائی جاتی کہ میں نے یہ اچھا خواب دیکھا ہے، میں نے یہ اچھا خواب دیکھا ہے، اور کچھ اس کو نظر نہیں آتا. ہاں جی، تو آپ بھی اس انتظار میں کہ جب آپ کے ناغے نہیں ہوں گے تو اس وقت آپ بتائیں گے، تو یہ بالکل غلط بات ہے. اور یہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ کم از کم عقل سے اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ طریقہ میرا ٹھیک نہیں ہے. آپ کو بلا کم کہ جو ہے نا وہ اپنی حالت بتانا چاہیے، سچ سچ جیسے بھی ہے. اچھے اور برے کا تو آپ فیصلہ ہی نہیں کر سکتی. کہتے رائے علیل علیل، علیل کی جو رائے وہ بھی علیل ہوتی ہے. ہاں جی، تو ڈاکٹر کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کون سی چیز کیسی ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی بہت موٹا ہو گیا، وہ سمجھتا ہے کہ مجھے بڑی صحت حاصل ہو گئی، اور ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر کو بتایا، ڈاکٹر کہتے اوف تم تو ورزش کر لو، تمہارا تو ویٹ بڑھ گیا ہے، تم اپنے وزن کو اتنا کم کر لو، یہ کر لو وہ کر لو. اب یہ آدمی کہتے اوہ میں تو اتنا موٹا ہو گیا تھا، میں تو اتنا زبردست اچھی صحت ہوئی، اور ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں؟ ڈاکٹر کہہ دے کہ تم ورزش کرو، تم یہ کرو وہ کرو. تو اصل بات یہ کہ صحت کی ڈیفینیشن تو ڈاکٹر کو معلوم ہے، تجھے کیا معلوم ہے؟ ہاں جی، تو لہٰذا یہ اپنے بارے میں یہ گمان رکھنا کہ جب میں اچھی ہو جاؤں گی تو پھر کہوں گا، تو اس کا مطلب آپ نے فیصلہ کی قوت اپنے آپ کو دے دی ہے کہ میں خود فیصلہ کروں گی کہ جب میں اچھا ہو جاؤں گی تو پھر میں بتاؤں گی. تو یہ بات غلط ہے. آپ نے اپنی حالت چاہے اچھی ہے چاہے بری ہے، جس کو بھی آپ سمجھتی ہے، آپ نے بلا کم و کس بیان کرنا ہے، یہی علاج کا طریقہ ہے. حضرت جی اپنے حوالے بھیجے، اگر مناسب ہو تو خط کے متن آن ایئر کے بغیر یہ جواب عنایت فرمائیں، کیونکہ اس کو اچھا ٹھیک ہے جی. تو بہرحال اب تو میں نے جواب دے ہی دیا. تو حضرت جی بہت سی خاص راتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں دل چاہنے کے باوجود مکمل مناجات مقبول پڑھنے کا موقع نہیں ملتا. اگر ہم خواتین کام کاج کے دوران حضرت والا کی آواز میں ریکارڈ مناجات مقبول سن لیں اور ساتھ ساتھ امین کرتے رہیں تو کام بن سکتا ہے؟ جی، وہ اس لحاظ سے کہ اصل میں اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کیا مانگ رہی، تو جو کہا گیا اور اس کا امین آپ نے کہہ دیا تو آپ نے وہ مانگ ہی لیا، تو ایسا ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال خود مانگنے میں فائدہ زیادہ ہے. السلام علیکم حضرت جی، میں بدستور مراقبہ ثبوتیہ جاری رکھے کیے ہوئے ہوں 3 ماہ کے قریب وقت ہونے کو ہے. آپ نے اس کی تبدیلی ہے اس کو جاری رکھنے کے بارے میں نہیں ارشاد فرمایا. دوران مراقبہ ان صفات سے ملنے والے فیض کا دھیان خوب رہتا ہے. آپ کی رہنمائی کا طالب. ٹھیک ہے، آپ جب تشریف لائیں گے تو پھر آپ سے اس پر بات ہوگی. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह बरकातुहू जी। मेरे तीन बच्चे हैं, मेरे और मेरे शोर के ऊपर हज फ़र्ज़ हो गया। मेरे शोर अपनी अम्मी को भी साथ हज करवाना चाहते, लेकिन तीन लोग के लिए जो खराजात है वो पूरे नहीं हो पाते, इसलिए हज में तखिर हुई। क्या मेरे शोर को के ऊपर अपने वालदा को हज पहले करवाना ज़रूरी है और हम फिर बाद में कर लें हज, या हम दोनों को पहले कर लेना चाहिए? एक मोटी सी बात है लेकिन रिवाज के अंदर दब गई है। हाँ जी, जिन पैसों का जो मालिक है, हज की फर्जियत का फैसला उस पर है। अगर पैसों का मालिक आपका शौहर है तो उस पर हज फर्ज हो गया, जो दूसरे मालिक नहीं है तो उनके ऊपर हज फर्ज नहीं है। अब अगर खुद हज नहीं करता और अपने वालदा को कराता है तो ये जुर्म कर रहा है। ये उस सूरत में है कि पहले अपने वालदा को सारे पैसे दे दो, उसको मालिक बना दो, तो फिर उसके बाद, लेकिन वो भी ठीक हो जाएगा, लेकिन आपका जो हज फर्ज पहले हो चुका था वो चीज़ तो आपके ऊपर रह ही जाएगी। लिहाजा इस तरीके से भी नहीं करना चाहिए, पहले अपना हज करना चाहिए। जब उसके ऊपर फ़र्ज़ नहीं तो आप उसके ऊपर ज़बरदस्ती क्यों फ़र्ज़ करवा रहे हैं? हाँ जी, तो उनको तो महरम की भी ज़रूरत होगी। तो ऐसी सूरत में मतलब यह है कि पहले हज कर लो, अगर उसके अलावा पैसे नहीं हैं तो फिलहाल ना करो, फिर बाद में जब हो जाए तो उनको करवा लेना। इस तरह बीवी के भी अगर अपने पैसों की मालिक नहीं है तो उस पर भी हज फ़र्ज़ नहीं होता। हाँ जी, तो उस पर तब फ़र्ज़ होगा जब वो ख़ुद अपने माल के मालिक हो जाएगी, फिर उसके ऊपर फ़र्ज़ होगा। तो अगर शोहर उसको अपने पैसों से करवाता है तो उसका एहसान है, वो उसके ऊपर फ़र्ज़ नहीं है। हाँ, सवाल आया, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह बरकातुहू। लताएफ़ और मुराकबा के लिए मोबाइल पर अलार्म लगा रहे, तो जब अलार्म बजते उसे बंद करके अगला शुरू करूँ, क्या अंदाज़े से कर ली करूँ ताकि तसलसल बरकरार रहे? असल में वो ये वाली बात है कि आप जो है ना वो अंदाज़े से अगर आपने करना है और अंदाज़े से आप कर सकते हैं तो घड़ी सामने रख लें, तो अंदाज़े से करके देखिए, अगर वो पूरा नहीं हुआ तो दोबारा शुरू कर ले उसको। हाँ जी, जब मतलब हो जाए तो फिर इसके बाद अगला शुरू कर ले, क्योंकि अगर अंदाज़ा आपका ठीक है तो फिर उसमें घड़ी भी का इस्तेमाल भी सही हो जाएगा, और अगर अंदाज़ा गलत है तो फिर तो आपका सारा काम गलत हो जाएगा। तो इस वक्त अगर अंदाज़ा आपका सही है तो आपकी घड़ी पे सही काम मतलब हो सकेगा, अलार्म लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आपको अंदाज़ा हो जाए कि आपका अंदाज़ा सही है नहीं है, क्या अंदाज़? अच्छा, मुराकबत जलियत अफ़ालिया पर जिक्र को मेरा ख्याल है एक माह हो गया है, गलती से पहला डेटा डिलीट हो गया था। तो तजलियात अफ़ालिया के अगर एक आपका मे हो गया है तो फिर इसके बाद सिफात सबूतिया वाला मुराकबा शुरू कर लें। हाँ, उसको चूंकि उसने कैफियत सही नहीं बताई थी तो इस वजह से मैंने कहा कि उसको एक महीना और कर ले, इस तसव्वुर के साथ कि अल्लाह ताला के हुक्म से हर काम होता है, उसका फैज़ अल्लाह ताला से, जैसे कि उसकी शान है आप सल्लम के गल मुबारक में और आप सल्लम के गल मुबारक से शेख के दिल में और शेख के दिल से मेरे दिल में आ रहा है। آنکھ اور زبان قابو میں کرنے کے لیے علاج تجویز فرما دیں. اس کے لیے ہمارے پاس دو مجاہدے ہیں. آنکھ کا مجاہدہ یہ ہے کہ آپ پہلے آنکھ والا مجاہدہ میرے خیال میں کر لیں, پھر اس کے بعد زبان کا کر لیں گے. وہ یہ ہے کہ آپ ایک تنہا مقام پہ 5 منٹ کے لیے نیچے دیں گے روزانہ, ملے پہلے روز, اگلے دن 6 منٹ, اگلے دن 7 منٹ, اس طرح ایک ایک منٹ بڑھاتی جائیں. تو 20 دن جو ہے نا ایسا کر لیں تو 25 منٹ تک آپ پہنچ جائیں گے, پہنچا دیں گے. تو پھر آپ باہر آ کر لوگوں کے درمیان رہ کر نیچے دیکھ کر ان سے باتیں کریں گے 5 منٹ پہلے دن, پھر اس کے بعد اگلے دن 6 منٹ, اگلے دن 7 منٹ, اس طرح اس کو بھی آپ نے یعنی 20 دن مطلب چلانے تو 25 منٹ تک پہنچ جائے گا. اب یہ 25 منٹ جو آپ نیچے دیکھنے کی صلاحیت حاصل کر چکے, تو جب بھی آپ کے ساتھ کوئی مشکل بات ہو یعنی بغیر محرم موجود ہو تو آپ یہ شروع کر لیں گے. تو اس طریقے سے 25 منٹ میں آپ کو نکلنے کا موقع مل جائے گا کہ وہاں سے آپ آرام سے نکل سکیں گے. تو یہ تو آنکھ کا مجاہدہ ہے, یہ آپ پورا کر لیں, پھر اس کے بعد انشاءاللہ زبان کا مجاہدہ بتاؤں گا انشاءاللہ. تو یہ تو پورے ہو گئے. اب میں ای میل کے ذریعے سے دیکھتا ہوں کہ ای میل میں کوئی آیا ہے یا نہیں آیا. تو یہ تو پورا ہو گیا, اب یہ ذرا دیکھ لیں کہ ادھر سے کوئی آئے. اچھا تو اب اگر کوئی फोन पर पूछना चाहते हैं तो वो भी पूछ सकते हैं, और साथ हाजरीन जो मौजूद है वो भी पूछ सकते हैं। चल उधर तेरे
बहुत से गुमान जो हैं गुनाह होते हैं, तो किसी के बारे में अच्छा गुमान बुरा गुमान किस तरह होता है? क्योंकि अब ऐसा भी होता है कि एक आदमी के अंदर शर भी है कि कहीं मुझे इससे नुकसान ना पहुंच जाए, तो जाहिर है कि उस शर की बुनियाद पे इंसान उसके बारे में बदगुमानी करने लगता है, तो इसको बैलेंस कैसे किया जाता है?
अपने आप को बचाना तो ज़रूरी है और दूसरों के बारे में बदगुमानी से बचना है, ये दो बातें अपने अपने तौर पर अहम हैं। इस वजह से आपको अगर कोई बदगुमानी है तो उसकी सही एनालिसिस कर लें कि आया वो बदगुमानी है या वाकई उसकी कोई हकीकत है। तो अगर कोई हकीकत हो तो उसके बारे में फिर ज़ाहिर मतलब है कि इंसान को हक है कि वो अपने दफा करे, यानी अपने आप को बचाए उससे। तो उसके लिए फिर उसको ज़ाहिर जैसे फरमाते ला युहिब्बुल्लाहु जहर बिस्सुई इल्ला मन जुलिम, किसी के बारे में मतलब इंसान किसी के बारे में बुराई का इजहार नहीं कर सकता मगर उसके ऊपर अगर जुल्म किया जा रहा हो। हाँ जी, तो इस वजह से मतलब जाए अगर किसी के वक्त साथ कोई ज़्यादती हो रही हो तो अपने ज़्यादती से दूसरों को भी आगाह कर सकता है और खुद भी खबरदार रह सकते।
अच्छा, जब हम किसी को माफ कर दिया,
करीब कर
किसी को माफ किया, अब उसने जो पहली दफा शर किया उसको हम बिल्कुल बुलाएंगे तो वही शर फिर भी हो सकता है? तो माफ करना यानी एक अलग बात होगी और उसके आइंदा मोहतात रहना अलग बात होगी?
जी, माफ़ करना तो गुज़श्ता को माफ़ करना है और ख़बरदार रहना मुस्तकबिल के साथ ताल्लुक़ रखता है। तो ख़बरदार तो रहना चाहिए, अलबत्त ये कि माफ़ गुज़श्ता को कर लिया तो कर लिया।
और हजरत, जिस तरह घर में हम घर वालों के साथ तालीम करते हैं फजाइल अमाल की, उसमें अब अनवानात, हकायत सहाबा, फजाइल कुरान, नमाज, जिक्र, ये हैं चंद एक हैं, तो क्या इसके अलावा भी कोई ऐसी किताब हम घर वालों के साथ पढ़ सकते हैं?
जी हाँ, ये हमारे जो जुब्द तसव्वुफ़ है या तसव्वुफ़ का खुलासा है, इसको पढ़ा जा सकता है। जी बिल्कुल, ये तालीम की किताबें हैं।
हज़रत, जिस तरह फ़ज़ाइल अमाल में वो हज़रत लिखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जितना ज़माने के एतबार से दूरी होती जा रही है, उसी तरह कुव्वत कल्बिया कमज़ोर होती जा रही है, तो उसी को ओवरकम करने के लिए मशायख
जिक्र
ये
अज़कार बताते
जिक्र
हैं।
अज़कार कराते हैं,
जी हाँ,
तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह ज़माना आगे जा रहा है, सैर इलल्लाह का जो ये प्रोसेस है ये थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है?
हम मेहनत तलब होता जा रहा है। लेकिन एक बात को आप महसूस करें, अगर मिसाल के तौर पर एक शख्स है, उसको पहले ही से यानी सैर अल्लाह मुकम्मल हो, तो सारा काम सैर फिर अल्लाह पे करेगा, मेहनत तो उस पे करेगा ना, फिर तो मेहनत तो फिर भी रहेगा, फिर उसमें रहेगा मेहनत। और इस सूरत में आजकल के दौर में अगर सैर अल्लाह के लिए मेहनत कर रहा है तो अगर सिर्फ अल्लाह पे नहीं चल पा रहा है तो चूंकि उसका मुकद्दमा मौजूद है लिहाजा अल्लाह ताला को तो उसका पता है, तो उसका उसको अजर मिलेगा। तो मतलब यह है कि जो सिर्फ अल्लाह दूर होता जा रहा है लेकिन सिर्फ अल्लाह की जो मंजिल है वो तो है ही मौजूद, जो कि सिर्फ अल्लाह ही है। लिहाजा जैसे मतलब यह है कि हाफिज़ कुरान बिस्मिल्लाह कर लेता है तो हिफ्ज में शुमार होता है, ठीक है ना, तो इसी तरीके से सालिकीन का भी हाल।
हज़रत, आज के ज़माने में तसव्वुफ़ को समझने में और मशायख से इस्लाह होती है, ये एक ज़रूरी काम है।
जी हाँ,
इसको समझने में उम्र गुजर जाती है, उम्र का बहुत बड़ा हिस्सा गुजर जाता है, और उसमें रुकावट होते हैं दूसरे दीनदार लोग जो उसको समझाते हैं, ठीक है भाई ये एक ज़माना था, खानकाओं में बैठ के सदियाँ साला साल इसमें गुजर जाते थे, लेकिन अब अल्लाह ने एक दोबारा से एक मौलाना इलियास के ज़रिए हमारे लिए ये काम शुरू कर दिया, इसमें सारा कुछ कवर अप हो जाता है। तो ये प्रोसेस, इस चीज़ के करीब लोग आते हैं फिर दूर होते हैं, जिस तरह मैं खुद गुजरा हूँ, तो इसको कैसे किया जाए ताकि वो अगर समझते समझते उनको साला साल भी लग जाए, लेकिन वो किसी ना किसी तरह उनको इस्लाह के पटड़ी पे हों कि वो उस तरफ चल रहे हों।
असल में ये बात मुझसे करने की नहीं है, बल्कि ये बात ऐसे हजरात से करने की है जिनकी वजह से इस किस्म के मसाइल पैदा हो रहे हैं, कि उनको बताया जाए कि अपने साथियों को ये बात बताएं कि ये जो है ना, मतलब ये है कि ये जो काम है ये बहुत अहम काम है, लेकिन मुकम्मल नहीं है, बल्कि इसके साथ जो और चीज़ें हैं वो होंगी तो फिर ये मुकम्मल होगा। मसलन इल्म होगा तो इल्म उलमा से हासिल होता है, तरबियत होगी तो तरबियत मशाइख से हासिल होता है। हाँ जी, तो ये सारे काम उसके साथ साथ चलेंगे तो फिर काम होगा। तो ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो अपने बयानों में, अपने मतलब जो है ना वो निज़ामों में इस चीज़ को शामिल कर लें। हम अगर कहते हैं तो हमें मुखालिफ समझ लेते हैं, ये तो मुखालिफत कर रहे हैं, हालांकि मुखालिफत तो नहीं, हम उनके साथ इजहारी हमदर्दी कर रहे होते हैं, लेकिन ये है कि उनको ये लगता है कि जैसा मुखालिफत कर रहे हैं, तो ये उनका काम है कि वो अपने लोगों को समझाए, उनका काम हो।
अब हज़रत, अगर मिसाल के तौर पे हम तसव्वुफ़ का नाम नहीं लेते, मशायख का नाम नहीं लेते, सिर्फ जिक्र का शौक दिलाते हैं, क्या इसमें उम्मीद है कि जब वो जिक्र का,
देखिए जिक्र की दो किस्में, एक निसाब, एक गजाई है और एक इलाजी है। तो गजाई जिक्र तो आप कर सकते हैं, लेकिन वो तसव्वुफ़ नहीं है, वो तसव्वुफ़ नहीं है। मतलब गजाई जिक्र जो आप करते हैं वो तो आप वैसे भी करेंगे, इलाजी जिक्र बगैर शेख के होता नहीं है, तो आप कैसे तसव्वुफ़ का नाम नहीं लेंगे और वो हो जाएगा, किस तरीके से करेंगे, तरीका क्या होगा? डॉक्टरी के बगैर डॉक्टरी करने का कौन सा तरीका है? इसके बजाय फिर सही बात समझानी चाहिए, वरना फिर तो नहीं होगा ना। मतलब हम कहते चलो जी, लोगों को डॉक्टर बुरे लगते हैं तो चलो जी हम इंजीनियर को उनके लिए डॉक्टर बना लेते हैं, तो बन जाएगा इंजीनियर, इंजीनियर होता है डॉक्टर, डॉक्टर होता है तो डॉक्टर के पास नहीं जाएगा तो इंजीनियर तो कुछ भी नहीं कर सकेगा। मतलब इसके कम अज़ कम रूट्स तो ठीक होने चाहिए ना। आपका कोई सवाल?
वैसे ही अभी ये कहता कि नफ्से मुतमैना हासिल होने के बाद, मतलब क्या ये इम्कान होता है कि कोई हालात ऐसे बन जाएं, कुछ और हो जाए कि वो नफ्स मुतमईना होने के बावजूद नफ्स अपना जोर दिखा दे और आदमी उस पे गफलत में चला जाए?
हज़रत तानवी रहमतुल्लाह अलैह ने जो इरशाद फरमाया वो ये है कि नफ्स का इलाज अगर हो जाए तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी जोर नहीं दिखाएगा, वो सिर्फ कंट्रोल में आ जाता है। तो कंट्रोल में आने के लिए कुछ टेक्निक्स होती है, वो समझ जाता है, तो अगर उन टेक्निक से गफलत करेगा तो फिर तो कर सकते हैं ना, वो तो अलर्ट रहने की ज़रूरत तो फिर भी होगी ना, लेकिन अलर्ट होने के साथ साथ कामयाबी हो जाती है। अब अगर आदमी उससे गाफिल हो जाए और कह दे कि बस ठीक है जी, बस मैंने सीख ही लिया, तो सीखना ही सिर्फ काफ़ी तो नहीं होता, वो करना तो फिर भी होता है ना, लेकिन वो करने पे कादर हो जाता है। सही, साइकिल चलाना सीख लिया तो खुद ब खुद साइकिल तो नहीं चलेगा। हैंडल पे पैर मारने पड़ेंगे। बैलेंस आ गया ना बस। सही इनको दे दो।
हज़रत ये बताएं कि अकल का इंसानी ज़िंदगी में इंसानी इंसानियत इंसानी लाइफ में क्या काम है, और उस वो ख्यालात को क्या क्या पता चले कि कौन से ख्यालात ठीक हैं कौन से ख्यालात गलत हैं, और अकल को किस तरह इम्प्रूव किया जाता है, उसकी ताकत किस तरह बढ़ाई जा सकती है, इस बारे में थोड़ा सा।
अकल ये एक कैपेबिलिटी है इंसान की, जिसके ज़रिए से इंसान सोच सकता है, अंदाज़ा कर सकता है, फैसला कर सकता है, किसी काम को होते देखकर उसके ठीक और गलत होने का अंदाज़ा कर सकता है। अगर उसके वो ज़राए उसको मैसर हो जिसके ज़रिए से वो ऐसे कर सकता हो, मसलन सबसे पहले ज़रिए इसमें इल्म है। अकल के ज़रिए से आप इल्म हासिल कर सकते हैं, लेकिन इल्म के ज़रिए से आप अकल को सही इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको मिसाल के तौर पर आप बहुत अक्लमंद हैं लेकिन आपने डॉक्टरी सीखी नहीं, तो क्या आप डॉक्टरी कर सकते हैं? वो नहीं कर सकते, लेकिन अक्लमंदी की वजह से आप डॉक्टरी अच्छी तरह कर सकेंगे। यानी अगर आपने डॉक्टरी सीख ली तो एक अक्लमंद डॉक्टर में बेवकूफ़ डॉक्टर में फ़र्क होता है। बेवकूफ़ डॉक्टर डॉक्टरी डॉक्टर होते हुए भी गलतियाँ करेगा बेवकूफ़ी की वजह से, हाँ जी, लेकिन जो अक्लमंद डॉक्टर होगा वो जो है ना मतलब वो गलतियाँ नहीं करेगा। इस तरह कोई भी शोबा ले लो, तो अकल में ये मतलब अकल जो है ना असल में इसका जो मैदान है वो सोच है, अंदाज़ा है, फैसला है, और अपने जो ना मतलब ये है कि वो जो सीखा है उसके बारे में पता करता है कि वो ठीक हो रहा है ठीक नहीं हो रहा। तो ये चीज़ें अकल के साथ होती है, लेकिन उसके साथ जो ज़राए हैं उन ज़राए को हासिल करना ज़रूरी होता है। अब मिसाल के तौर पर एक बहुत बड़ा अक्लमंद बहुत अच्छा ड्राइवर है लेकिन उसकी गाड़ी ख़राब है, हाँ जी, वो ख़राब गाड़ी को बहुत माहिर ड्राइवर जो है ना वो कैसे चलाएगा? चला तो लेगा लेकिन कितनी मुश्किल होगी उसको, कभी एक चीज़ को पकड़ रहे कभी दूसरे को पकड़ रहे, कभी एक कर रहे कभी दूसरा कर रहे, उसको वर्कशॉप ले जाने की ज़रूरत होगी। तो जब तक उसको वर्कशॉप नहीं दिया जाएगा उसको ठीक नहीं करेगा तो उसकी महारत कब तक उसका साथ देगी? कोई ऐसा गलती वो कर सकता है जिसकी वजह से सारे के सारे जो है चीज़ ख़राब हो जाए? तो इसकी मिसाल नफ्स की है। तो सिर्फ अकल का ठीक होना काफ़ी नहीं है, नफ्स का ठीक होना भी ज़रूरी है, ठीक है ना। फिर इसके अंदर जो ताकत है वो इंजन से आती है, तो वो जज्बात है, तो अकल वो दिल में है, तो अगर दिल की इस्लाह नहीं हो तो फिर वो काम नहीं हो सकता, हाँ जी। तो इसका मतलब तीनों चीज़ों की इस्लाह बैक वक्त ज़रूरी है, और इनका आपस में तरतीब बनाना ये भी। तो तरतीब बनाना ये कि दिल के ज़रिए से जो इंसान नूर हासिल करता है ईमान का, उस नूरी ईमान से उसका अकल मुनव्वर अगर हो जाए तो फिर वो बजाय इसके कि दुनियावी चीज़ों के बारे में फैसला कर लें और उसको बेहतर करने की कोशिश कर लें, वो आखिरत को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। उसको पता होता है कि आखिरत अच्छी भी है और बाकी रहने वाली भी है, अपने अकल से अंदाज़ा लगा लेता है। तो फिर इसके लिए वो सारी मेहनत करता है, दुनिया को गुजारे जितनी करता है और आखिरत के लिए जान तोड़ मेहनत करता है, हाँ जी। तो ज़ाहिर मतलब है कि वो दिल का काम हो गया, और इस तरीके से फिर नफ्स उसकी तरबियत जब हो चुकी होती है तो उसको जो भी यानी वो अकल ही पर उसको चलाता है, लेकिन बहरहाल वो अड़ी नहीं करता, वो मुखालिफत नहीं करता। तो इन तीन चीज़ों की दुरुस्तगी बेवकूफ़ ज़रूरी है। सिर्फ अकल पे काम काफ़ी नहीं है। ठीक है ना, अगर अकल से काम नहीं लेंगे तो हमें बिलमारूफ उल्टा फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। मतलब यह है कि वो जैसे मिसाल के तौर पर गम के मौके पर आप लतीफ़ा सुना दें तो आपने सारे मुखालिफत अपने लिए बना दी, कहते ये कोई तरीका है, मतलब ऐसे वक्त लतीफ़ा की क्या बात है, और आपने खुशी के वक़्त गम की बातें करनी शुरू कर दी, फिर लोग जो है ना मतलब आप कहेंगे جماعت میں ایک صاحب تھے, اس نے ایک بیان سنا جس کی وجہ سے لوگوں نے کافی وقت لگا ارادے کیے, تو اس نے کہے تو بہت زبردست قیمتی بیان, اس نے مینوان اس کو یاد کر لیا, یاد کر لیا تو اپنی جگہ پر اس کو کیا تو کسی نے بھی وقت نہیں لگایا. تو جماعت ہی کے ایک بزرگ سے پوچھا کہ حضرت یہ کیا ہوا, یہی بیان تو یا تو اس نے بہت وقت لوگوں نے لکھوایا اور میں نے بیان کیا اس پہ کچھ؟ انہوں نے کہا تو نے کون سے مجمع میں بیان کیا تھا, غریبوں کا تھا یا مالداروں کا تھا؟ اس نے غریبوں کا, تو کہتے وہ تو مالداروں میں ہوا تھا, آپ نے مالداروں کا بیان غریبوں کو سنا دیا, ان پہ خاک اثر ہوگا, سمجھ میں آ گئی بات؟ اب یہ عقل کی بات ہے.
تو حضرت جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہارون علیہ السلام کو بھی میرے ساتھ کر دیجیے, کیونکہ ان کی انسانیت فصاحت ہے, تو
یقیناً ذرائع ہیں نا, ٹولز ہیں, ٹولز ہیں نا, وہ بھی میں نے بات نہیں کی, یہ ٹولز.
تو حضرت اگر صحیح طرح امر بالمعروف کا نہ ڈنگ آتا ہو تو اس کے لیے دعا کر دینا؟
جی بالکل, دعا بھی کرنا چاہیے, سیکھنا بھی چاہیے, دونوں کام ہونا چاہیے. بلکہ ہمارے حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ تو اکثر فرما دیتے کہ لوگ امر بالمعروف تو کرتے ہیں, نیل منکر نہیں کرتے, حالانکہ امر بالمعروف نیل منکر دونوں لازم ہیں. تو فرمایا کہ نیل منکر اس لیے نہیں کرتے کہ اس سے پھر نقصان ہوتا ہے اگر غلط کرے, تو سیکھنا چاہیے. تو باقاعدہ سکھاتے تھے حضرت نیل منکر, ہاں سکھاتے تھے. آخر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ غلط وضو گٹکے سے ٹھیک کروایا تھا, تو نیل منکر ہی تھا نا. درمیان میں نفس آ جائے تو سارا گڑبڑ ہو جاتا ہے.
حضرت تبلیغ میں بھی جس طرح کہتے ہیں حال سے حال پھیلتا ہے, کال سے کال پھیلتا ہے,
ہاں ٹھیک ہے نا, صحیح فرمایا.
صرف باتیں,
صرف باتیں نہ ہو, بالکل صحیح, ایسے ہی ہوتا ہے. یہ کسی بزرگ نے بات کی ہوئی ہے تو زبان پہ تو چل پڑی, لیکن
تو تصوف میں پہلے حال کو حاصل کیا جاتا ہے تاکہ پھر کال میں وزن ہو.
قال را بگزار مرد حال شو, پیش مرد قامی کاملے پامال شو. قال کو ایک طرف کر لو, مرد حال بن جاؤ, اس کے لیے اپنے آپ کو شیخ کامل کے سامنے پامال کر دو. یہ سب آ گیا, سوال آ گیا. السلام علیکم. جی اچھا بھیجیں, میں دیکھ لیتا ہوں, میں دیکھتا ہوں. کہتے ہیں بھیج دیا. اچھا حضرت والا, واٹ از ڈفرنس بٹوین ضربی ذکر اینڈ جہری ذکر سم ٹائمز انوالونگ ڈیورنگ لا الہ الا اللہ ذکر مائی ہیڈ موز ان دا چشتی مینر ایز وی سا ابا جان اینڈ ادر چشتی مشائخ ڈو دین آئی مائی سیلف بٹ آفٹر اے وائل اٹ بگینز اگین شوڈ آئی اسٹاپ اٹ بائی فورس اور ناٹ وری ایز اٹ از غیر اختیاری. لا الہ الا اللہ کا جو چشتی اس کا حضرات میں بھی مختلف طریقے سے ہوتا ہے. ہمارے بہت سارے بزرگ جو چشتی طریقے سے ذکر کرتے ہیں, جیسے مطلب جو ہے نا وہ پورے لطائف کے اوپر گزروا دیتے تھے. تو اب چونکہ لوگوں کی کوہ کمزور ہیں تو اس طرح کرنے سے ان کا جو توجہ ہے منتشر ہو جاتی ہے. تو ہمارے شیخ جو ہے نا مطلب یہ کہ اتنا سارا نہیں کرتے تھے, بلکہ وہ دل کو ہی بنیادی فوکس رکھتے تھے, باقی لطائف کی طرف نہیں جاتے تھے. ہاں جی, اور ویسے بھی چشتی حضرات جو ہیں وہ تو لطیفہ قلب ہی کو مانتے ہیں, وہ لطیفہ باقی لطائف کے بارے میں ان کے مطلب جو ہے نا وہ نہیں کرتے, تو اس وجہ سے دل پر ہی ان کا سارا ہوتا ہے. تو اگر دل پر ہی کرنا ہے تو پھر آسانی یہ ہو جاتی ہے کہ آپ جو لا الہ کرتے تو لا الہ کو دائیں سے یا بائیں سے یا سامنے نکال کے, تینوں ڈائریکشن آپ کے پاس ہے, تو تھوڑا نکال کے پھر اللہ کا ضرب دل پر لگا دے, لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ, یہ میں لا الہ دائیں طرف نکالو, پھر اب اوپر باہر کی طرف لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ, اب بائیں کر رہا ہوں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اب اس میں میرے سر نہیں ہل رہا لیکن چیسٹ میں حرکت محسوس ہوتی ہے, مطلب یہ والی بات. تو حضرت نے اس لیے شروع کروایا تھا تاکہ جو ہے نا زیادہ مطلب جو ہے نا وہ دماغ پر بوجھ نہ ہو, تو اس میں زور دل پر ہی زیادہ لگتا ہے, اور اس میں حکمت یہ ہے کہ دل کو اللہ پاک نے خاص صلاحیت دی ہے برداشت کی, یعنی دل مسلسل چل رہا ہے, دیکھو نا کب سے چل رہا ہے لیکن وہ چل رہا ہے, باقی جب باقی چیز میں اپنے ہاتھ کو اتنا چلاؤں نا پتہ چل جائے گا, ہاں جی, یا ہاتھ کو یا پاؤں کو یا سر کو نہیں, مطلب اتنے دیر زیادہ دیر چلا سکتا, تک جاتا ہے, تو اسی بلکہ فٹیگ میں آ جاتا ہے. تو اس وجہ سے ضرب جو دل پہ لگتا ہے تو وہ دل کو مسئلہ نہیں ہوتا. میں نے اسپیشلسٹ سے پوچھا, ڈاکٹر ارشد سے میں نے پوچھا تھا کہ یہ دل پہ ضرب لگاتے ہیں تو اگر دل کا بیمار ہو تو اس کے ساتھ, انہوں نے کہا بیمار دل کو ضرب نہیں لگوانا چاہیے اور جو صحیح دل ہوتا ہے اس کو ضرب سے کچھ نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے اگر کسی کو اس قسم کی شک ہو تو ہم کہتے ہیں بھائی ڈاکٹر سے پہلے معلوم کرواؤ کہ آپ کا دل کو کوئی مسئلہ تو نہیں, اگر نہیں ہے تو پھر پرواہ نہ کرو. ہاں جی, تو یہ ماشاء اللہ اگر آپ اس طریقے سے کرتے ہیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو بہرحال یہ کہ جو ہمارے اور اکابر جو کرتے ہیں ماشاء اللہ, میرے خیال میں آپ کے والد صاحب شاید زیادہ کرتے ہوں کیونکہ انہیں کی مختر صاحب سے سیکھا ہوگا. ہاں جی, لیکن بہرحال ہم نے جو اپنے شیخ سے جو سیکھا ہے وہ صرف دل کے اوپر ہی وہ کرتے ہیں, اور دل سے خارج اور دل کے اوپر, دل سے خارج دل کے اوپر, وہ تینوں ڈائریکشن میں ہو سکتا ہے, دائیں بھی ہو سکتا ہے, آگے بھی ہو سکتے اور بائیں بھی ہو سکتے. اشهد ان لا اله الا الله حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر. إلا نعلم وصلى على سيدنا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القامة آت محمد المسيح والفضيلة. بات ہو رہی تھی، کوئی بات ہو رہی تھی اسے تو بس یہ پورا ہو گیا، انشاءاللہ پھر ذکر کرتے ہیں. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا هو 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 لا الہ الا ہو، 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 اللهم صل على سيدنا. حق 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 حق. اللهم صل على سيدنا. الله 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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعلني صبورا واجعلني شكورا واجعلني في عين صغيرا وفي الناس كبيرا. اللهم ادع في أرضنا بركة وزينة وسكنة ولا تحرمني بركة ما أتيتني ولا تفتني فيما حرمتني. اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي وأزيب غير قلبي وأجرني من وزلات الفتن ما حيتنا. اللهم اللهم لقني حجة الإيمان عند الممات. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم خير ما بعده. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وفته ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك عفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عورتي وأمن روعتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعزمتك أن تغتال من تختي. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. أصلح لي شاني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض وبكل حق ولك بحق سائلين عليك أن تقيلني وأن تجيرني من النار بقدرتك. اللهم جل وعلا هذه النار الصلاة ووسطها فلاح وآخر نجاها. أسألك خير الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لي ذنبي واغسل الشيطاني وفك رهاني وسق الميزان وجلني في النديه الأعلى. اللهم اكني عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم رب السماوات السبع وما زلت ورب الاردین و ما قلت و رب الشیاطین و ما ضلت کلی جار من شر خلق اجمعین یفرط علی احد منهم یطغى او یطغى جارک و تبارک اسمک لا الہ الا انت لا شریک لک سبحانک اللهم انی استغفرک لذنبی و اسألک رحمتک اللهم اغفر لی ذنبی واسعی لی فی داری و بارک لی فی رزقی اللهم اجلنی من التوابین و اجلنی من المتطهرین اللهم اغفر لی واهدنی واهدنی وارزقنی وعافنی وارزقنی لما اختر فی من اهلک باذنک اللهم اجعل فی قلبی نور و فی بصر نور و فی سمع نور و فی یمین و عن یمین و عن شمال نور و خلفی نور و من امام نور و اجلی نور و فی اسبی نور و فی لحم نور و فی دم نور و فی شعر نور و فی بشر نور و فی لسان نور و اجعل فی نفسی نور و عظیم نور و اجعل نور و اجعل من فوق نور من تحت نور اللهم آت نور اللهم افتح لنا باب رحمتك وسهل لنا باب رزقك اللهم اسلمني من الشيطان اللهم اني اسالك من فضلك اللهم اغفر لي خطايا وذنوبي كلها اللهم نشني واهدني وارزقني واهدني لصالح الاعمال والاخلاق انه لا يهدي صالحا ولا يسرف سيئا الا انت اللهم اني اسالك رزقا طيبا وعلما نافعا وعملا متقبلا اللهم اني ابدك وابن امتك وابن امتك ناصيت بيدك ماض في حكمك عدل في قضاك اسالك بكل اسم ولك سميت به نفسك او وزلت في كتابك وعلمته احدا من خلقك او استاثر به في علم الغيب عندك انت القران العظيم ربي قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي اللهم اله جبرائيل وميكائيل وسرافيل واله ابراهيم واسماعيل واسحاق وعافني ولا تسلطن احدا من خلقك علي بشيء لا طاقه لي به اللهم اكفني بحلالك عن حرامي واغنني بفضلك عمن سواك اللهم انك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانتي ولا يخفى عليك شيء من امري وانا الباعث الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المقر المعترف بذنبي اسالك مسألة المسكين وابتلوك اليك ابتلى الموزن من الذليل وادعوك دعاء الخائف الضرير ودعاء من خذت لك رقبته وفاض لك ابرته وذل لك جسمه ورغم لك انفه اللهم لا تجعلني بدعائك شقوا شقيا وكن برؤوف رحيما يا اخر مسؤول وخير مواطين اللهم لك اشكو زوف قوتي وقلة هيلتي واعواني على الناس يا ارحم الراحمين الا من تكلني الى عدو يتهجمني ام الى قريب ملكت امري ان لم تكن ساغة علي فلا اباري انا عافيت وسولي اللهم إنا نسألك قلوبا نواهة مخبتة مدنين منيبة في سبيلك اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلبي ويقينا صادقا حتى أنا أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كذبت لي ولزم من المعيشة بما قسمت لي اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول اللهم إني أعوذ بك من كراهة الأخلاق والأعمال والهواء ولا دواء أعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ومن جار السوء وفي دار المقامة فإن الجار بادية تحول وغلبة العدو وشماتة الأعداء ومن الجوع فإنه بئس الضجيع ومن الخيانة فبئست البطانة وأن نرجن على أعقابنا ونفتن عن ديننا أو نفتن من عن ديننا ومن الفتن ما ظهر منها وما بطن من يوم السوء من ليلة السوء من ساعة السوء من صاحب السوء ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا وصلى الله